माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा जय गोपी जना वल्लभ, जय गिरिवर धरे, जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धरे, जय गिरिवर जय सुदानंदन, जय ब्रज जन रंजन, जय ब्रज जन रंजन, जय ब्रज जन रंजन, ब्रज जन रंजन, जय यशोदा नंदन, जय ब्रज जन रंजन, जय ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारे, जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीरवन चारे, जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीरवन चारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, Yeah. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचार्योष्टौ श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस राधा शरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचार्योष्टौ श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मई जमुना मई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की श्रील प्रभुपाद ट्रांसनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की ताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग
हरे कृष्ण some of the boys are new they have come students many students have come today they are all in second year just 2 minutes only hare krishna so how many of you are attending Gaurang Prabhu's program for the first time see they are all coming first time so this is Gauranga Prabhu studied in IIT Bombay He did his B.Tech. Way back in 91, he graduated and joined the ISKCON Grand Road Shri Radha Gopinath Mandir in 94. He was one of the first students of His Holiness Bhakti Rasam Swami Maharaj when Maharaj used to come to IIT days. And I was very fortunate to be around. I was doing my M.Tech and he was doing his B.Tech and we both used to attend the classes. And after joining Chopari Temple in 94, Gauranga Prabhu has been conducting extensive Bhagavatam classes all over the Bombay city and made a innumerable congregation. But besides giving the Bhagavatam in different places, he also took many administrative managerial responsibilities in Chopari Temple in various departments like the deity department, the kitchen department and Brahmachari Ashram development department. And also he used to go to Bhaktivedanta Hospital and do a program for the doctors called Sanjeevani. He was also doing a program for the company corporate people called as corporate athlete in different parts of India. So that was in very great demand. But some of the companies wanted him for one full day to give his seminars. And his main activity has been, he started the IYS, ISKCON Youth Services in Bombay in 96-97. And eventually you all know, very steadily, consistently, they have been doing more than 150 prerana programs, which happens once in a month, where about 1,000 youths come to the temple once in a month. Similarly, the girls' program is called Chetana. So the prerana and Chetana is a steady phenomenon in Chopari Temple, and which has brought hundreds and thousands of youths to the Krishna consciousness. And after that program, they would put them in different parts of Bombay called bases. So in this way, he has been very actively doing that. He has given many prerana lectures. And as a right-hand assistant of His Holiness Radhanath Maharaj, he has been a great instrument in Maharaj's hands in going to New York, Bhakti Center Development, as well as Seattle, and many other parts of America and Italy and other places where Maharaj has been going. He has been assisting Maharaj in preaching role and managing guiding role. And also, in yatras, the most vital and A famous thing is the prasadam, which he cooks for more than 5,000 devotees. And Gauranga Prabhu is the one who leads, personally wearing the apron and carrying the chamach in the hand. Many of you will see him. He takes lead in that. And also in the recent past, His Holiness Radhanath Maharaj wanted to give shape to the dream of Srila Prabhupada in the form of Govardhan Eco Village, which is 2 hours from the Chaupati temple, where Maharaj made Gauranga Prabhu play a very vital role as a project director. And some of you students have gone there. Those who haven't gone can visit there. It's a very beautiful place, which was the dream of Prabhupada for many years. Prabhupada has given a very clear outline of what should be done, and Paramapuja Raghunath Maharaj very strictly followed that, and he gave it shape through Gauranga Prabhu's hands. And also Chaupari temple has more than 50 satellite centers across Maharashtra and other parts of India, and representing Maharaj, Gauranga Prabhu and Shyamanand Prabhu, Radha Gopinath Prabhu, Govind Prabhu, Sanat Kumar Prabhu, they all have been helping those satellite centers. And Gauranga Prabhu, after seeing the situation of ISKCON in various places, he came up with leadership programs, administration programs, and how to help the managers run their own centers very successfully. So he has come with a program called Prem Milan for all the Maharashtra leaders brought under one roof. So in this way, he has hand in various type of activities of ISKCON. And at a global level, he is a GDO, Global Duty Officer, working along with our Gopala Bhatta Prabhu, who runs the strategy planning team of ISKCON, which is actually like a think tank of ISKCON, for assisting GBC in reaching out, the successful best practices in ISKCON all over the world. So he plays a very important role in that. The devotee care department was only a theory, only in paper. Later on, they appointed Gauranga Prabhu to take it to nook and corner, and now it's happening now. So thanks to Gauranga Prabhu for his putting heart in various aspects of ISKCON, both locally and globally. For us, Pune devotees, he is very special for us, because he and the Govind Prabhu used to come regularly here to Pune during the days when NVCC was coming up, and they have inspired hundreds of well-wishers, donors, by giving their programs and inspiring them to donate for the cause, plus giving inspiration to all of us devotees here in Pune also by his wonderful lectures and personal one-to-one guidance. And I am very thankful to him as a friend who always extends himself despite his extremely tight schedule practically all over the world. So many of his students are seeing him for the first time. You will see him. He also regularly sends out yoga stories. Some of you might have seen the WhatsApp, you must have seen. So he is available to people both in terms of philosophy and administration, leadership and practical friendship. I thank him for extending himself in such a large way, touching the hearts and lives of millions of devotees. Let us welcome him to Radha Vrindavan Sankirtan. Yes, Gauranga Prabhu ki.
हरे कृष्णा. सभी को विनती है कि आगे थोड़ा थोड़ा आगे आइए. पीछे कई सारे डिवोटीज है, उनको बैठने के लिए जगह नहीं है. थोड़ा सा आगे आइए.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 28. अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति. एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्तम् अतत् अर्हणम् ग्रहीतुम् कृतधि एनम् भयनामा अभ्यपद्यत. एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्तम् अतदर्हणम् ग्रहीतुम् कृतधीरेणम् भयनामाभ्यपद्यत एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्तम् अतदर्हणम् गृहीतुं कृतधीरेणम् भयनामाभ्यपद्यत एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्तम् अतदर्हणम् गृहीतुं कृतधीरेणम् भयनामाभ्यपद्यत एवं इस प्रकार कृपणया दीन बुद्ध्या बुद्धि से शोचन्तम् पछताते हुए अतत अर्हणम् जिस पर उसे नहीं पछताना चाहिए था गृहीतुम् बंदी बनाने के लिए कृतधि दृढ़ संकल्प यवनराज एनम् उसको भयनामा भय नामक अभ्यपद्यता तुरंत आ गया। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। यद्यपि राजा पुरंजन को अपनी पत्नी तथा बच्चों के भाग्य के विषय में पश्चाताप नहीं करना चाहिए था, फिर भी उसे अपनी दीन बुद्धि के कारण ऐसा किया। उसी समय भय नामक यवनराज उसे बंदी करने के लिए तुरंत निकट आधम का। तात्पर्य, मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि प्रत्येक जीव अपने कर्मों तथा कर्म फलों के लिए उत्तरदायी हैं। जब तक जीव छोटे बच्चे या अबोध बालक के रूप में रहता है तब तक माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि वो उसे जीवन के मूल्यों की सही जानकारी दें। जब वह बड़ा हो जाए तो उसे जीवन के सारे कार्य करने के लिए छोड़ देना चाहिए। माता पिता मृत्यु के पश्चात अपने संतान की सहायता नहीं कर सकते। पिता अपने संतानों को तुरंत सहायता करने के लिए कुछ संपत्ति छोड़ सकता है, किंतु उसे इन विचारों में डूबा नहीं रहना चाहिए कि इसकी मृत्यु के पश्चात उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। बद्ध जीव का यही रोग है। वह न केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए पाप कर्म करता है, वरन मरने के पश्चात अपने संतान के लिए इतना धन छोड़ जाता है कि वे भी इंद्र तृप्ति से अच्छी तरह खर्च कर सकें। जो भी हो, प्रत्येक प्राणी मृत्यु से भयभीत रहता है, इसलिए मृत्यु को भय कहा गया है। यद्यपि राजा पुरंजन अपनी पत्नी तथा संतान के विषय में सोचने में लगा हुआ था, किंतु मृत्यु ने उसकी प्रतीक्षा नहीं की। मृत्यु किसी मनुष्य की प्रतीक्षा नहीं कर सकती, वह अपना कार्य तुरंत निपटाती है। क्योंकि मृत्यु बिना किसी हिचक के जीव को अपने साथ ले जाती है, अतः नास्तिकों के लिए यह चरम ईश्वर साक्षात्कार है। जो ईश चेतना को भुलाकर मात्र अपने देश समाज और रिश्तेदारों के बारे में ही सोचते हुए जीवन बर्बाद करते रहते हैं। इस श्लोक में अतत अर्हणम अत्यंत सार्थक है, क्योंकि इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने परिवार के सदस्यों, देशवासियों तथा समाज के कल्याण कार्यों में अत्यधिक व्यस्त नहीं होना चाहिए। इनसे मनुष्य का आध्यात्मिक विकास नहीं होता। दुर्भाग्यवश आज के समाज में तथाकथित शिक्षित व्यक्तियों को आध्यात्मिक उन्नति के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। यद्यपि मनुष्य जीवन पाकर उन्हें आध्यात्मिक उन्नति करने का अवसर मिलता है, किंतु वे कृपण के कृपण बने रहते हैं। वे अपने संबंधियों, देशवासियों, समाज इत्यादि के विषय में ही सोच सोच कर अपने जीवन को अनुचित ढंग से उपयोग में लाकर उसे बर्बाद करते रहते हैं। मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य है कि वह मृत्यु पर विजय पाना सीखे। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मृत्यु के जीतने की विधि बताई है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मैंने प्राकट्य तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को भली भांति जानता है, वह शरीर त्यागने के बाद इस जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, वरन वह मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है, वो इस शरीर को त्यागने के बाद दूसरा शरीर धारण नहीं करता, वरन भगवान के धाम वापस जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को यह सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसा न करके लोग समाज, मित्रता, प्यार तथा संबंधियों के विचार में मग्न रहते हैं, किंतु यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व के लोगों को मृत्यु को जीतने की शिक्षा दे रहा है। हरिम बिना न श्रुतिम तरंती, भगवान के शरण ग्रहण किए बिना कोई मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये शिला प्रभुपाद जी चतुर्थ स्कंद के इस श्लोक पर मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। अहंकृति मकारस्यात् न कारत निषेधक तस्मात् तो नमसा क्षेत्रे स्वातंत्र्यम् प्रतिषिध्यते। पद्म पुराण में नमः शब्द की परिभाषा आई है। बड़ा सुंदर ये उल्लेख आया है, नमः शब्द का अर्थ क्या है? म अर्थात मैं और मेरा, अहंकार और ममता की भावना। तो नमः शब्द का अर्थ है अहंकृति म कारस्यात्। जो म शब्द है वो अहंकार का प्रतीक है। न कार तन निषेधक, और उसके आगे जो न लगता है उसका अर्थ यह है कि हम अहंकार से प्रेरित हर भावना को त्यागने की इच्छा रखते हैं। तस्मात् नमसा क्षेत्री स्वातंत्र्यम प्रतिषिध्यते, इसलिए हर बद्ध जीव को अपनी स्वतंत्रता के कार्य क्षेत्र को सीमित करना है। स्वातंत्र्यम प्रतिषिध्यते, और हर जीव के दो विशेष गुण होते हैं। पहला कहते हैं कि तदायतात्म जीवन तस्मात् स्व सामर्थ्य विधिम त्यजेत सर्वम अशेषतः। जीव के दो लक्षण क्या हैं? पहला सबॉर्डिनेशन, अर्थात वह किसी के अधीन कार्य कर सकता है, और दूसरा सेवा। सो सबॉर्डिनेशन एंड सर्विट्यूड आर द टू नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल, है कि नहीं? तस्मात, इसलिए स्व सामर्थ्य विधिम, हर जीव को अपने इस मनोभाव को गहन पूर्वक देखना है, क्या कि मैंने ये कार्य अपनी शक्ति से सिद्ध किया है, अपने सामर्थ्य के ऊपर अभिमान, अपनी शक्तियों के ऊपर गर्व, अपने गुणों के ऊपर विशेष रूप से गौरव या आत्मविश्वास, और ये विचार करना कि जो कुछ भी हुआ वो मेरे कार्य से हुआ। तो इसलिए इसको कहते हैं तस्मात् स्व सामर्थ्य विधिम, अपने सामर्थ्य के ऊपर इतना गर्व त्यजेत, उसको त्यागना है। सर्वम, पूर्ण रूप से, अशेषतः, अशेषतः भी सर्वम जैसा ही है, कोई शेष न बचे। अर्थात इस त्यजेत शब्द को क्वालिफाई किया है ये दो शब्दों से, सर्वम और अशेषतः, हर प्रकार से, हर दृष्टि से, हर दिशा से। स्वमातो स्विन्न गात्राय विसृष्ट कबर सृज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासीत सुबंधने। दामोदर लीला में जब यशोदा माई भगवान श्री कृष्ण को बांध रही है, तो ये शब्द आता है कि स्विन्न गात्राय। कृष्ण देखते हैं कि यशोदा माई का संपूर्ण दिव्य देह सर से लेकर नख तक पूरी तरह पसीने से तर हो गया, विसृष्ट कबर सृज, और उनके केश बंद पर मल्लिका पुष्प बिखर कर नीचे उनके चरणों को चूमने लगे। दृष्ट्वा परिश्रमम, यशोदा माई के इस परिश्रम को देखकर कृपयासीत सुबंधने, कृष्ण अपने ही बंधन में बंधने के लिए तैयार हो गए। तो दृष्ट्वा क्या देखा, परिश्रमम, तो परिश्रमम श्रम अर्थात प्रयास, परि अर्थात जब एक प्रयास विफल हो तो दूसरा प्रयास आरंभ करना, जब दूसरा प्रयास विफल हो तो तीसरा प्रयास आरंभ करना। प्रयास के एक विफलता में और नए प्रयास के आरंभ में क्षण भर का भी विलंब न हो, अर्थात अथक प्रयास करते रहना, अविलंब प्रयास। इसलिए परि शब्द का अर्थ होता है 360 डिग्री, परिसर अर्थात चारों दिशाओं से, हर दिशा से हमें अटैक करना है। ये नहीं कि एक प्रयास विफल हुआ तो जप माला रख के सो गए, बोले हमसे होने ही नहीं वाला, ये तो सत्युग के लिए नियम है, हम तो ये कर ही नहीं सकते। परिश्रमम। प्रभुपाद जी कृष्ण बलराम मंदिर में थे, वहां एक भक्त बहुत अधिक मंदिर में और उस वहां के कार्य को सफल करने में पूरी तरह से जुटे हुए थे, और उनके मन में एक भाव आने लगा कि बस यहां जो कुछ भी हो रहा है ये मैंने सब कुछ किया इसलिए हो पाया। तो प्रभुपाद ने उनके इस भाव को भांप लिया कि इनके मन में अहंकार बढ़ रहा है। तो रात को 1 बजे प्रभुपाद जी ने अपने सेवक को भेजा कि इस भक्त को उठा के लेके आओ। अब रात को जाकर सेक्रेटरी इनको उठाता है, उठो उठो प्रभुपाद बुला रहे हैं। घबरा के उठ के बैठा, टाइम देखा 1 बजा है, बोले 1 बजे बुला रहे हैं प्रभुपाद, क्या हो गया? तो उनका हृदय धक धक करने लगा, तो 1 बजे रात को क्यों बुलाया, कुछ इमरजेंसी है क्या? भागे भागे प्रभुपाद के पास गए, प्रणाम किया, प्रभुपाद जी आपने बुलाया? प्रभुपाद ने कहा हाँ, क्या कर रहे थे तुम? बोले प्रभुपाद मैं सो रहा था। प्रभुपाद बोले क्यों सो रहे थे? बोले प्रभुपाद रात को 1 बजे हैं। प्रभुपाद ने कहा मेरे लिए भी 1 बजे हैं, मैं तो नहीं सो रहा हूं, मैं तो ट्रांसलेशन कर रहा हूं, तुम क्यों सो रहे हो? बोले प्रभुपाद आप तो परमहंस हो, मैं तो पतित हूं। प्रभुपाद ने कहा तुम पतित क्यों हो, तुम परमहंस क्यों नहीं हो? ये घबरा गया, समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऊटपटांग बातें क्यों कर रहे हैं, लेकिन समझ गया ज्यादा बहस करना ठीक नहीं, हाथ जोड़ा बोला प्रभुपाद बताइए मैं क्या करूं? प्रभुपाद बोले वापस जाके सो जाओ। जाते जाते सोचने लगे कि शायद मैंने कुछ गलती की, मुझसे कुछ भूल हुआ है, हाँ, और ये मैंने जो किया शायद मेरे मन में जो विचार था ये उचित नहीं था। तो इसलिए तस्मातु नमसा क्षेत्री स्वातंत्र्यम प्रतिषिध्यते, और तस्मात् स्वसामर्थ्य विधिम त्यजेत सर्वम अशेषता। इसलिए स्वसामर्थ्य विधिम, अहंकार से प्रेरित ये भावना कि मैंने इस कार्य को सिद्ध किया है, मैं अज्ञान से मुक्त हो सकता हूं, ये ज्ञान मैंने अर्जित किया, ये जो भावना है, चाहे किसी कार्य क्षेत्र में क्यों हमारे हृदय के सागर में ये बुलबुले न उठें, लेकिन इनको तुरंत हमें नियंत्रित करना है। तो इसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने मार्ग दिया है हरिनाम संकीर्तन का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु जब बंगाल में संन्यास लेने के पश्चात जगन्नाथपुरी गए, फिर दक्षिण भारत की यात्रा करने के बाद पुनः लौटे, फिर वो बंगाल आते हैं। तो दक्षिण भारत से लौटने के बाद वृंदावन जाने की उनकी इच्छा होती है, तो बारंबार भक्तों से निवेदन करते हैं कि मुझे वृंदावन जाने की अनुमति दीजिए। अन्यर हृदय मन मोर मन वृंदावन मने वने एक कोरी जानी। महाप्रभु के मन में निरंतर वृंदावन का भाव उमड़ता रहता था। संन्यास लिया तो तुरंत भागे वृंदावन जाने का प्रयास किए, इसलिए महाप्रभु के मन में वृंदावन के सिवा अन्य कोई भाव था ही नहीं। तो इसलिए वृंदावन जाने की इतनी लालसा थी, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको बंगाल भेज दिया। महाप्रभु बंगाल में गए और गंगा को देखकर उनको लगा यमुना है, और यमुना सोचकर उसमें छलांग लगाए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु को पूछे यमुना है क्या, नित्यानंद प्रभु का हां, छलांग लगाए और तैर रहे थे तो वहीं पर नौका लेके अद्वैत आचार्य आ गए। तो महाप्रभु अद्वैत आचार्य को देख के बोले, अरे तुम भी वृंदावन आ रहे हो अद्वैत, मुझे नहीं मालूम था। अद्वैत आचार्य बोले, प्रभु ये शांतिपुर है, वृंदावन नहीं। तो नित्यानंद महाप्रभु जो है, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को छल करके वृंदावन के बदले बंगाल लेके आए। प्रभु को है नित्यानंद अमेवांछिला, गंगा के आनिया मुरे जमुना कोहिला। गंगा में लेके आए यमुना बोलकर, और तब महाप्रभु बंगाल में अपने भक्तों के साथ कुछ समय बिताए, फिर वहां से उनके अनुमति लेकर पुनः वृंदावन आए, जगन्नाथपुरी आए। जगन्नाथपुरी आकर फिर वो दक्षिण भारत की यात्रा जाकर फिर पुनः लौट के आकर फिर निवेदन करते हैं, मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। लेकिन इस बार भक्त लोग कहते हैं कि आप जन्माष्टमी तक रुक जाइए, कुछ लोग कहते हैं कि आप कार्तिक तक रुक जाइए, फिर होली तक रुक जाइए। इस तरह करते करते और 2 साल बीत गए। तो लगभग 1510 में महाप्रभु ने संन्यास लिया, दक्षिण भारत से लौट के आए 1512 तक। 1512 से 1514 तक जगन्नाथपुरी में ही भक्त लोग घुमा रहे थे कि अभी जाएंगे, अभी जाएंगे, अभी नहीं बाद में। तो इसका वर्णन करते हैं कविराज गोस्वामी, यद्यपि स्वतंत्र प्रभु नहे निवारण, भक्त इच्छा बिना प्रभु न करे गमन। महाप्रभु भले स्वतंत्र हैं पूर्णतः, यद्यपि स्वतंत्र प्रभु, लेकिन नहे निवारण, कोई उनको रोक नहीं सकता, लेकिन भक्त इच्छा बिना प्रभु न करे गमन। भक्तों का आशीर्वाद के बिना वो जाना नहीं चाह रहे थे। तो इसलिए गीता में कर्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, योग का मार्ग और साथ में फिर भक्ति का मार्ग भी दिया हुआ है। कर्म के मार्ग में हमारे कार्यकलाप प्रधान है, ज्ञान के मार्ग में हम ज्ञान का अवलंबन करते हैं, योग के मार्ग में सिद्धि श्रेष्ठ है, एक्सपर्टीज। सो इन कर्मा द फोकस इज ऑन अचीवमेंट, इन ज्ञाना इट इज ऑन अक्वायरिंग नॉलेज, एंड इन योगा इट इज ऑन डेवलपिंग एक्सपर्टीज। लेकिन भक्ति के मार्ग में विशेष रूप से अहंकार शून्य होकर कैसे हम दास बन सकते हैं, तो ये महाप्रभु स्वयं प्रदर्शित कर रहे हैं। महाप्रभु कह सकते थे, अरे तुम लोग कौन होते हो रोकने वाले, तुमको क्या पता वृंदावन क्या होता है, घड़ी घड़ी कह रहे हो अब जाओ तब जाओ, बैठे रहो यहां पर, मैं जाके आऊंगा। लेकिन यद्यपि स्वतंत्र प्रभु नहे निवारण, भक्त इच्छा बिना प्रभु न करे गमन। भक्त की इच्छा के बिना वो नहीं जाना चाहते थे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति की पराकाष्ठा क्या है इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिन बन, सई सब रासादिक लीला, सई ब्रजेर ब्रज जन माता पिता बंधुगण।
बड़ चित्र के मने पासरिला। महाप्रभु श्रीमती राधारानी का भाव लेकर निस्वार्थ सेवा भाव क्या होता है इसका वर्णन करते हुए जिस प्रकार राधारानी भगवान श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखकर संबोधित करती है कि हे कृष्ण, ये वृंदावन, गोवर्धन, यमुना, ये जितने 12 वन हैं, ये सभी रासलीला के स्थली हैं। सई ब्रजेर ब्रजजन माता पिता बंधुगण, ये सब ब्रजवासी माता पिता बंधुगण इत्यादि को आप भूल चुके बड़ा चित्र, ये कितने अद्भुत बात है, आश्चर्यजनक बात है के मने पासरिला, आप कैसे इनको भूल सकते हो। हाँ, विदग्ध मृदु सतगुण सुशील स्निग्ध करुण सही अमार नाही दोषाभास। तो फिर कहते हैं राधारानी की वैसे शास्त्र तो कहते हैं कि आप तो विदग्ध हो, मृदु हो, सद्गुणों से संपन्न हो, हाँ सुशील हो, करुण हो, तो इसलिए आपको कौन दोष दे सकता है कि आप वृंदावन नहीं आ रहे। अगर आपको हम दोष दें कि आप क्रूर हो, कठोर हो, तो शास्त्र का विरोध हो जाएगा, क्योंकि शास्त्र में कहा है कि करुणा की मूर्तिमान स्वरूप आप हो। तो इसलिए आप वृंदावन नहीं आने के पीछे क्या कारण है, से अमार दुर्दैव विलास, ये केवल हमारे पिछले जन्मों के कर्म का परिणाम है कि आप नहीं आ पा रहे। न गणी आपना दुख देखी ब्रजेश्वरी मुख ब्रज जनेर हृदय बिदरे, कीबा मार ब्रज आसी कीबा जियाओ ब्रजे आसी के न जियाओ दुख सहे बारे। कि भले आप मेरे दुख के उपेक्षा कर दो, लेकिन ब्रजेश्वरी यशोदा माई के मुख को तो देखो कैसे उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होकर उनके मुख के ऊपर इसके चिन्ह अंकित हो गए हैं, और उसको देखकर तो आप समझ सको कि वो कितनी वेदना में है। कि बा जियाओ ब्रजे आसी, या तो ब्रज में आकर ब्रजवासियों को जीवित करो, पुनर्जीवित करो, या ये संदेश भेज दो कि मैं वृंदावन नहीं आने वाला और सबकी मृत्यु का हम कारण बने, हम लोग सब मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीच में आप अधमरा परिस्थिति में छोड़ के गए हो, केन जियाओ दुख सहे बारे। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा गए, लेकिन पुनः वृंदावन लौट के नहीं आए 100 वर्षों तक। लेकिन ब्रजवासी निरंतर भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न थे, क्षण भर के लिए भी ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण की सेवा को त्यागने का विचार नहीं किया, क्षण भर के लिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में वैमनस्व उत्पन्न नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण के प्रति निरंतर अनुकूल भाव रखते हुए केवल दीर्घकालीन प्रतीक्षा में वो डूबे हुए थे, क्योंकि वो प्रेम की पराकाष्ठा और प्रेम का वास्तविक मापदंड क्या है उस आदर्श को प्रस्तुत करना चाहते थे कि हाँ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण चाहते तो केवल भक्ति का ही वर्णन प्रथम अध्याय से 18वें अध्याय तक कर सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने चिल्ला चिल्ला कर कर्म का भी वर्णन किया, ज्ञान का भी वर्णन किया, योग का भी वर्णन किया, और इन सभी जटिल पद्धतियों के बीच बीच भक्ति का भी वर्णन करके कह भी दिया कि सुलभ तस्याहम सुलभ पार्थ, ये बड़ा सुलभ है, भक्ति का भी विज्ञापन किया। लेकिन इन सभी ज्ञान, इन सभी अलग अलग पद्धतियों के साथ साथ भक्ति का वर्णन क्यों किया, क्योंकि जगत में विविध प्रकार के लोग हैं, विविध प्रकार की इच्छाएं हैं, हृदय के भीतर भाव अनंत हैं, इसलिए कौन व्यक्ति किस पद्धति के प्रति आकर्षित होकर स्वाभाविक रूप से उस पद्धति का अवलंबन करे, इसको सिद्ध कर पाना बड़ा कठिन है। इसलिए सब लोगों को चयन करने का अवसर देना चाहिए, स्वेच्छा के आधार पर जो स्वीकार करेगा वही वास्तव में स्थायी रहेगा, जीवन के अंत तक वो चलेगा और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी सामाजिक दबाव के अंतर्गत दूसरे कर रहे हैं इसलिए हम भी इस मार्ग को अपनाएंगे, ये विचार करके कोई आध्यात्मिक मार्ग स्वीकार किया तो वो चलायमान रहेगा, स्थायी नहीं रहेगा, कुछ समय तक चलता चला जाएगा, लेकिन उसके पश्चात श्रद्धा शनै शनै डगमगाने लगेगी और फिर हमारे मन में अलग अलग प्रकार के संशय उत्पन्न होने लगेंगे। और इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको कहते हैं स्वाभाविकी भक्ति और बलोत्पादिता। स्वाभाविकी अर्थात जो स्वाभाविक रूप से हृदय के अंतःकरण से उत्पन्न हो, बिना किसी अन्य व्यक्ति के दबाव के हम इस मार्ग को अपनाएं, इसको कहते हैं स्वाभाविकी, क्योंकि ये हमने चयन किया है इसलिए। बलोत्पादिता अर्थात अन्य कई कारणों से हम उस मार्ग को अपनाते हैं, अन्य कई लोगों के दबाव के अंतर्गत या फिर सामाजिक दबाव के अंतर्गत, क्योंकि हमारे समाज के कई लोग इस मार्ग को अपना रहे हैं और इन सब को देखकर हमें लग रहा है कि हम नहीं अपनाएं तो मान हानि हो जाएगी और हम नहीं अपनाएं तो समाज में लोग तिरस्कार करेंगे और फिर पराजय की भावना उत्पन्न होगी, तो फिर इसलिए इस दबाव में, सामाजिक दबाव के अंतर्गत कोई हरिनाम संकीर्तन में भाग लेता है, नाम जप आरंभ करता है और सामाजिक दबाव के अंतर्गत किसी सद्गुरु का आश्रय लेकर दीक्षा लेता है, क्योंकि इन सब की दीक्षा हो गई, मेरी दीक्षा नहीं हुई तो क्या होगा, हाय हाय मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसे दबाव में आकर अगर कोई श्री गुरु का आश्रय लेकर परंपरा में शुद्ध भक्ति का प्रयास करते हुए प्रेम को अपने जीवन का लक्ष्य सिद्ध करके अगर परंपरा में जुड़ता है तो दीर्घ काल में उसके मन में अनेक प्रकार के संशय और समस्या और कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु जो वर्णन कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, वृंदावन जाने की उनकी इच्छा है लेकिन महाप्रभु के अपने स्वाभाविक भाव है, ये कोई सामाजिक दबाव के अंतर्गत वो नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कि बाकी लोग बोल रहे वृंदावन जाओ वृंदावन जाओ और महाप्रभु ने जाना पड़ेगा, नहीं, महाप्रभु जाना चाहते, बाकी लोग कह रहे मत जाओ मत जाओ और महाप्रभु अपने आप को रोक के रखे हैं। और ऐसे स्वाभाविक की भक्ति का लक्षण क्या है कि समय के साथ ये आध्यात्मिक ऊर्जा, ये इच्छा शक्ति, ये क्षीण नहीं होती, कम नहीं होती, ये वास्तव में तीव्र होती चली जाती है। समय के साथ, काल के साथ, कालांतर से इस इच्छा शक्ति की तीव्रता कम नहीं होती। तो महाप्रभु को भले कई वर्षों तक भक्तों ने रोक के रखा, वृंदावन मत जाओ मत जाओ मत जाओ कहा, लेकिन महाप्रभु के वृंदावन जाने की इच्छा की अग्नि ज्वालामुखी की तरफ भड़कती चली जा रही थी और उन्होंने निश्चय किया हम वृंदावन जाके ही रहेंगे। उसी प्रकार जब हम भक्ति मार्ग आरंभ करते हैं और कुछ समय के पश्चात इच्छा शक्ति क्षीण हो जाती है, वैसे ही ब्रजवासी कृष्ण जब चले गए, कृष्ण के जाने के पश्चात ब्रजवासियों ने यह संकल्प नहीं किया, कृष्ण चले गए, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, अभी और किसी की पूजा करते हैं, लगता है कृष्ण के साथ जो संग था वो कोई स्वप्न था, ऐसा नहीं विचार किया। कृष्ण चले गए लेकिन ब्रजवासी निरंतर कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। इसलिए भगवान प्रेम की परीक्षा का वर्णन कर रहे हैं। हर कार्य को सिद्ध करने के लिए कोई परीक्षा होती है। अगर कोई सोना लाके दे तो वो सोना है कि पत्थर है कैसे समझेगा, कसौटी में घिसो तो समझता है ये सोना है कि नहीं। तो अगर कोई दूध लाके दे तो वास्तविक दूध है कि नहीं उसको समझने के लिए कई मशीन आते हैं, उसमें डालो तो समझ में आता है। उसी प्रकार ये प्रेम है अथवा नहीं, अब आप लोग कई लोग स्टूडेंट हो करके राधेश्याम प्रभु बोले, अब स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट क्लास में बैठकर टीचर जो बोलता है सर हिलाता रहता है, सर हिलाते हुए देखकर अगर टीचर को लगे हाँ कितना अच्छा सर हिला रहा है समझ गया, एग्जाम लेने की क्या आवश्यकता। तो केवल स्टूडेंट बैठकर सर हिलाए इससे प्रमाणित नहीं होता कि वो सब समझ गया। जब सामने पेपर आता है क्वेश्चन पेपर आने के बाद फिर सर हिलाए तब समझ सकते हैं कि हाँ इसने सीख लिया और फिर लिखना शुरू करे। कई हमारे स्टूडेंट लोग ठीक तरह से पढ़ते नहीं और क्वेश्चन पेपर आता है तो हाथ में माला ले लेते हैं, कहते हैं कम से कम दो माला कर ले, बाकी तो कुछ आता है ही नहीं। तो आपने पढ़ाई की है अथवा नहीं, इस बात का प्रमाण क्या है? प्रश्न पत्र। जब आप लिखोगे तब समझ में आता है। हम लोग ने मंदिर में सबसे पहली बार भक्ति शास्त्री करवाया, और भक्ति शास्त्री के लिए फिर जब एग्जाम हो रहा था तो मैं सबको जो है क्वेश्चन पेपर बांट कर बाहर चला गया। मैंने कहा डिवोटी लोग हैं सत्यम परम धीमही, परम सत्य के खोज में जो लगे हैं उनके ऊपर इतना तो विश्वास किया जा सकता है कि जो नियम है उसके अनुसार करेंगे। तो मैं क्वेश्चन पेपर बांट के बाहर निकल गया, बोला दूसरा कुछ काम करके आता हूं एक घंटे में। जब अचानक बीच में कुछ काम पड़ गया लौटा, देखा एक भक्त दूसरे भक्त के ही बेंच पे आके बैठा हुआ है और दोनों एक दूसरे का देख कर कुछ चर्चा कर रहे हैं आराम से, पूरे तल्लीनता से। मैं उनके पास गया, मुझे देखकर भी कुछ हिला नहीं उनका, चालू ही था। मैंने कहा कर क्या रहे हो? बोले ददाति प्रतिगृहणाति गुह्या माख्याति पृच्छति। मैंने कहा अरे भैया ये एग्जाम चल रहा है। बोले हाँ ये तो है, लेकिन वैसे कॉलेज टाइप का एग्जाम थोड़ी है, यहां पर तो मुख्य है कि स्मरण करो, तो कुछ कुछ चीज स्मरण नहीं आ रहा, तो हम लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, कृष्ण स्मरणम, वी आर नॉट इन टू मार्क्स एंड पासिंग एंड एवरीथिंग, वी आर बियॉन्ड दैट, वी वॉन्ट टू रिमेंबर कृष्ण। तो हमको कुछ कुछ पॉइंट याद नहीं आ रहा, ये हमको हेल्प कर रहा है, इसलिए तो इसलिए परीक्षा होती है। किस लिए? जिससे इस बात को सिद्ध किया जा सके कि कितना इसके अंदर ज्ञान है। सो फॉर एवरीथिंग देयर इज अ टेस्ट एंड बेस्ड ऑन दैट द क्वालिटी इज इवेल्युएटेड, है कि नहीं? किसने 90% प्राप्त किए, किसने 75%, किसने 50%, किसने 30%, तो उसके हिसाब से समझ में आता है कि क्वालिटी क्या है। उसी प्रकार प्रेम का अगर क्वालिटी कंट्रोल करना हो, इफ यू हैव टू इवैल्यूएट लव, सो देर आर टू टेस्ट्स टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ लव। फर्स्ट अनसर्टेनिटी एंड सेकेंड इज सेपरेशन। अनसर्टेनिटी एंड सेपरेशन टेस्ट्स लव। अनिश्चितता और संग विच्छेद ये प्रेम को प्रमाणित करने के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि जब अनिश्चितता आए और भविष्य के विषय में सब कोहरा अंधकार छाए, तब फिर समझ में आता है कि इस संबंध में कितना स्वार्थ भाव है और कितना निस्वार्थ भाव है। और जब विलंब, जब विप्रलंब आए या संग से हम दूर हो, जब व्यक्ति हमारे साथ न हो, जिनका सानिध्य न हो, तो उनसे दूर रहकर यदि हम उनके भावनाओं को समझकर उनकी सेवा अब भी कर सकें, उनको प्रसन्न करने की ही इच्छा मन में रखें, तो समझ में आता है कि इनका भाव बदला नहीं। सो सेपरेशन एंड अनसर्टेनिटी बोथ टेस्ट द डिग्री ऑफ सेल्फलेसनेस एंड देयरफॉर द क्वालिटी ऑफ लव। इसलिए ब्रजवासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने सबसे अधिक परीक्षा ली कि उनसे दूर हो गए और अनिश्चित हो गए। तो इसलिए हम लोग भी देखते हैं कि अपने परिवार इत्यादि में लोगों का प्रेम होता है और वो अनिश्चितता से घबरा जाते हैं, क्योंकि सब जानना चाहते तुम कर क्या रहे हो। लेकिन मैं भी जब मंदिर ज्वाइन हुआ तो हमारे परिवार के सभी लोग घबरा गए, बोले हो क्या रहा है, क्योंकि इस पूरी अनिश्चितता थी। बोले आगे क्या करोगे? यही करेंगे, उसके आगे यही, तो बोले ये तो गड़बड़ है। तो फिर मैंने उनके लिए प्रोग्राम अरेंज किया चेन्नई में, और 70-80 हमारे परिवार के सभी लोग एकत्रित हुए, और फिर एक और भक्त को मैं साथ में लेके गया लेक्चर देने। और उन्होंने लेक्चर में कहा कि किसी के परिवार में कोई भक्त बन जाता है, जैसे ये आपके परिवार का भक्त बन गया, तो परिवार के 21 पीढ़ियों के सारे सदस्य वैकुंठ चले जाएंगे। तो इसको सुनकर सबका चेहरा खिल गया कि भागवत में कहा गया है त्रिसप्तभी पिता पूता पितृभी सहते नगा। तो प्रोग्राम के तुरंत बाद मेरा कजिन मेरे पास आके बोलता है, भक्ति करते रहना, छोड़ना मत, कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताना। क्योंकि जब पता नहीं होता कि व्यक्ति क्या कर रहा है, अनिश्चितता के कारण चिंता बढ़ती है। तो इसलिए यहां पर ब्रजवासियों को किसी बात का संदेश नहीं था। और कृष्ण छोड़ के गए क्यों? कृष्ण के मन में भाव था कि देखो कंस को मार दिया, कंस के वध के पश्चात कंस के सारे निकट के लोग ये सभी एकत्रित होकर आक्रमण करेंगे, मैं जहां हूं वहां आक्रमण करेंगे, अब मैं मथुरा में हूं, अब यहां पर आक्रमण होगा, अगर मैं वापस वृंदावन गया कंस के सारे चेले चपेटों को मालूम पड़ेगा कि वृंदावन के ब्रजवासियों के साथ कृष्ण का कुछ संबंध है और वहां पर उनका संरक्षण करने कोई नहीं, जितना अधिक मेरा और ब्रजवासियों के बीच संबंध स्थापित होगा उतना अधिक ब्रजवासियों के लिए मेरे शत्रुओं से खतरा है, इसलिए जितना अधिक मैं ब्रजवासियों से दूर रहूंगा उतना ब्रजवासियों की सुरक्षा श्रेष्ठ होगी। ये कृष्ण के मन में भाव था। लेकिन कृष्ण ब्रजवासियों के पास गए नहीं लगभग 100 वर्षों तक, लेकिन ब्रजवासियों के मन में अभी भी यही भाव पनप रहा था कि कैसे हम कृष्ण की सेवा करें, कैसे कृष्ण को संतुष्ट करें। तो यही भाव लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वृंदावन जाने के बदले उन्होंने विचार किया कि मैं बंगाल होते हुए जाऊंगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी यात्रा आरंभ करते हैं जगन्नाथपुरी से। जगन्नाथपुरी से सबसे पहले वो जाते हैं कटक, और कटक से चलते चलते फिर जाजपुर, जाजपुर से आते हैं फिर रेमुना। जब रेमुना आते हैं तो रेमुना के उस तरफ एक स्थान है पिछलड़ा, और एक बहुत बड़ी नदी, और उस नदी को पार करके उस तरफ जाना था, और नदी के उस पार एक बहुत बड़ा गवर्नर रहता था जो कि बड़ा क्रूर था। और उस समय वर्णन आता है कि प्रतापरुद्र महाराज के स्वयं के सचिव महाप्रभु के साथ थे, और महाप्रभु को कह रहे थे कि वो जो गवर्नर है बड़ा क्रूर है और उनकी सेना बड़ी शक्तिशाली है और आक्रमण करेगी, इसलिए मैं 2-4 दिन हम लोग यहां पर रुकते हैं, और यहां रुकने के पश्चात हम उनके साथ एक संधि स्थापित करते हैं, वी विल एस्टैब्लिश अ पीस ट्रीटी, और तब जाकर जब वो अनुमति देंगे तब फिर हम लोग पार करेंगे, अन्यथा आपके लिए खतरा है। तो सोचिए 500 वर्ष पूर्व हमारी राजनीतिक परिस्थिति कितना डावाडोल थी कि उड़ीसा के बॉर्डर से बंगाल के बॉर्डर को क्रॉस करके प्रवेश करने के लिए इतना माथापच्ची हो रहा था। लेकिन महाप्रभु इस बात को मान गए, और महाप्रभु अपनी टोली के साथ वहीं उड़ीसा में रेमुना की तरफ रुक गए। और फिर यहां पर ये गवर्नर ने देखा कि बड़ा भयंकर संकीर्तन चल रहा है, जोर जोर से आवाजें आ रही हैं, अपने गुप्तचर को भेजा, बोला देख के आओ वहां हो क्या रहा है, कौन लोग हैं, इतनी भयंकर आवाज क्यों आ रही है। तो यहां पर भी हरे कृष्णा वाले आ जाते हैं, साउंड लेवल बढ़ जाता है कि नहीं। चौपाटी मंदिर में भी पहले हम लोग का मंगल आरती सुबह होता था 4:15-4:30 बजे, और तब सब आस पड़ोस के लोग जो हैं हम लोगों के कोर्ट केस करने लगे कि बहुत जोर जोर से ये लोग शोर कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। और कोर्ट केस क्या किया, वो वीडियो कैमरा लेके मंगल आरती में आ गए शूटिंग करने, और उस समय नए नए ब्रह्मचारी लोग थे, इतना वीडियो वीडियो कैमरा देखा नहीं था, तो उनको लगा अरे वीडियो शूटिंग ले रहे हैं करके सारे मृदंग उठा लिए, सारे वॉम्पर वॉम्पर लेके फुल एक्शन में आ गए। फिर कोर्ट ने निर्धारित किया कि आप लोगों का 4:30 का जो टाइम बहुत जल्दी है, 5 बजे से पहले नहीं करना है मंगल आरती। इसलिए चौपाटी मंदिर में हम लोग का उस समय से जो मंगल आरती 5 बजे होती है। उसके बाद वो सारा कोर्ट का रूलिंग सब हट गया, लेकिन हम लोग की आदत हो गई तो 5 ही बजे चल रहा है। एवं परंपरा प्राप्तम। और यहां तक कि कई वर्ष पहले एक व्यक्ति जो ज्वाइन हुआ था, जाते जाते मैंने पूछा अरे तुम 2-3 साल रहा, अब जा रहा है क्यों जा रहा है? प्रसाद में प्रॉब्लम था क्या? बोले प्रसाद में प्रॉब्लम नहीं था। लोग परेशान किए कि नहीं नहीं सबके संबंध अच्छे थे, तो जा क्यों रहा है? कुछ फीडबैक है तो बताओ, कुछ इंप्रूवमेंट हम लोग मंदिर में कर सकते हैं, कुछ सुधार के लिए कुछ फीडबैक है तो बताओ। बोला हाँ एक ही मेरा फीडबैक है, मंगल आरती सुबह 10 बजे कर दो, बढ़िया रहेगा। तो यहां पर महाप्रभु का कीर्तन इतना जोरदार चल रहा है कि उसको देखकर गुप्तचर आता है। तो यहां पर वर्णन आ रहा है, निरंतर करे सब कृष्ण संकीर्तन, सबे हासे नाचे गए करो ये क्रंदन। तो निरंतर कृष्ण संकीर्तन चल रहा था, और जब कीर्तन चल रहा था कई लोग हंस रहे थे, गा रहे थे, रो रहे थे, उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन चल रहा था। लक्ष लक्ष लोक ऐसे तहा देखी बारे, तर देखी पुनरपि जयते नरे घरे। तो लाख लाख लोग आकर्षित हो गए थे। महाप्रभु की टोली तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन जब छोटी सी टोली उच्च स्वर में और बड़ी तीव्रता से हरिनाम संकीर्तन आरंभ किए, लाखों लोग उस संकीर्तन में आ गए। तो ये कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, ये एग्जैजरेशन नहीं है। और कई बार कविराज गोस्वामी अपने श्लोकों में कहते हैं, जो मेरी बातों को कपोल कल्पित मानेगा वो देखो यमराज के वहां जाके दंड मिलेगा उसको। तो कभी कभी पढ़ते पढ़ते अपने को मन में लगता है अरे यार ये ज्यादा हो गया, और तुरंत अगले श्लोक में आता है, तुरंत अपन कंट्रोल करते, नहीं 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 ठीक है होगा होगा, वो जमाने में होता होगा, आजकल भले हमने नहीं देखा लेकिन उस समय होता होगा। तो लक्ष लक्ष लोक ऐसे तहा देखी बारे, लाखों लोग आ गए इसको देखने के लिए, महाप्रभु के सौंदर्य को देखने। कंचन सदृश देह और न बसन, पुलक अश्रु कंप स्वेद ताहाते भूषण। महाप्रभु क्योंकि संन्यास धारण किए थे, कंचन सदृश उनका स्वर्ण वर्ण अंग कांति, और अरुणोदय की वेला में सूर्य नारायण जिस प्रकार लालिमा छटाते हैं वैसे उनके संन्यास वस्त्र का रंग। पुलक अश्रु कंप स्वेद ताहाते भूषण, विष्णु के रूप में इतने जाज्वल्यमान आभूषण धारण करते हैं, लेकिन संन्यास धारण करने के पश्चात महाप्रभु के आभूषण क्या है? पुलक अश्रु कंप स्वेद, शुद्ध भक्ति के चिन्ह परिलक्षित करते हैं। और इसलिए महाप्रभु का सौंदर्य और महाप्रभु का दिव्य आनंद ये सबसे अधिक आक्रात्मक और आकर्षक तत्व है। प्रचार का अर्थ क्या है? प्रचार का अर्थ है कि आपके भक्ति के आचरण से आपके हृदय में जो आनंद का फव्वारा उठे, उस आनंद के फव्वारे के छींटे जब दूसरों पर पड़े, उनके हृदय में भी इच्छा जागृत हो कि हम भी ऐसे ही आनंद का पान करें, इसको कहते हैं प्रचार। प्रचार का अर्थ नहीं कि मैं लाचार और फिर दूसरों को कहो कि तू भी बन जा लाचार, है कि नहीं। प्रचार का अर्थ है कि स्वयं हम भक्ति का अनुभव करें, और जो भक्ति के अनुभव में हमें आनंद की प्राप्ति हो वो हम दूसरों में वितरित करने का प्रयास करें। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे टू कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस इज डिफिकल्ट, टू स्टे इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज मोर डिफिकल्ट, एंड टू स्टे हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज मोस्ट डिफिकल्ट, है कि नहीं। एक हमारा भक्त किताब वितरण कर रहा था, कोई आया उसके सामने, बोला गीता लो। बोले यार बड़ा तू दुखी लग रहा है। बोले क्या करें, इतनी धूप लग रही है, जबरदस्ती खड़ा हूं मैं। बोले मुझे क्यों गीता खरीदने बोल रहे हो सकता है तुम सुखी हो जाओ। बोले ये थोड़ा प्रचार होता है, प्रचार अर्थात हमने कुछ अनुभव किया वो हम दूसरों में वितरित करें। यात्रा में हम लोग गए थे, रात को 10 बजे थे, पूरा दिन हम लोग उस समय राधानाथ महाराज सब जगह लेके जाते थे, तो वृंदावन में पूरा दिन हम लोग घूम घूम कर पूरा थक गए थे और लेट बिल्कुल आए, और आने के बाद 10 बजे तो मैं बिल्कुल सोने के लिए तैयार था। बगल में हमारा एक भक्त बैठा था और हाथ में माला लेकर बैठ गया और सामने तकिया लगाया था, बड़ा गुस्से से देख रहा था। मैंने कहा यार ये रात को अभी 10 बज गया, मुझे तो नींद आ रही है, तो तुम अभी सो नहीं रहे हो क्या? बोले नहीं। क्या हो गया? 10 माला बाकी है। मैंने कहा वो ठीक है तो लेकिन इतने तुम्हारे चेहरे पर क्रोध क्यों है? भयंकर क्रोध, मैं सोच रहा हूं कि मुझे इस कौन में कौन लाया। मैंने कहा रे बाप रे बाप, तुमने अपना कार्य नहीं किया तो उसके बदले में कौन लेके आया, उसके पीछे लग गए। तो इसलिए ये भक्ति का मार्ग जितना दिखता है उतना आसान भी नहीं है, है कि नहीं। प्रभुपाद ने कहा कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो सिंपल यू विल मिस इट। तो इसलिए इसमें सबसे कठिन कार्य क्या है? टू बी स्टडी एंड कंसिस्टेंट इन द एज ऑफ अनस्टडीनेस। अर्थात अन्यथा मार्ग तो बड़ा सरल है, करना क्या है? हरे कृष्ण जपना है। नए नए कॉलेज के लोग आए हैं, क्या करते हो? हरे कृष्ण जपते हो। हम लोग कॉलेज में थे, क्या करते? हरे कृष्ण जप रहे हैं। 25 साल में हरे कृष्ण ही जपा है, और आगे क्या करेंगे? हरे कृष्ण ही जपेंगे। इसके बीच में क्या हुआ? बहुत पसीना बहाया है। धीरे धीरे हम लोगों की अनर्थ निवृत्ति होकर अर्थ प्रवृत्ति की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। तो इसलिए यहां पर तार देखी पुनरअपि जयते नारे घरे। तो हमें कौन आकर्षित करता है? भक्तों के भक्ति का अनुभव को देखकर हम लोग आकर्षित होते हैं कि अरे ये डिवोटी लोग कुछ बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। कई लोग इस्कॉन में आए भक्तों के मुस्कान को देख के, अरे क्या स्माइल है, मतलब बड़ा प्रसन्न लग रहा है। हाँ, प्रभुपाद जी एक बार रिपोर्टर के साथ बात कर रहे थे और वो रिपोर्टर बहुत सारे प्रश्न पूछ रहा था, और प्रभुपाद ने अचानक हाथ में संतरा लिया, संतरा का एक टुकड़ा मुंह में डाला और प्रभुपाद बोलते बोलते ओम सो कृष्णा इज सेइंग इन गीता, और फिर चबाते चबाते जब अंदर गुठली आया तो प्रभुपाद बात करते करते सर मुड़े और बगल में एक वेस्ट बिन रखा था, और यहीं बैठे बैठे प्रभुपाद ने थू किया। वो रिपोर्टर ने देखा कि वो गुठली सीधा गया उसके अंदर। फिर प्रभुपाद दूसरी गुठली लिए, उसको भी थू ऐसा फेंके। बात करते करते बिना रुके, और वो रिपोर्टर अभी सुन नहीं रहा था, वो केवल दे रहा था हर गुठली अंदर जा रही है। बोले यार ये स्वामी तो बड़े चमत्कारी हैं, ये देखकर वो इस्कॉन में ज्वाइन हो गया। अब ये देखकर अगर आप सोचो मैं अपने प्रोग्राम में 1 किलो संतरा लेके चलता हूं तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए प्रचार का मूल जो सिद्धांत है वो है कि हमने या भक्तों ने वैष्णव को देखकर लोग मंदिर में जुड़ते हैं, उनको देखकर मंदिर में जुड़ते हैं और मंदिर में आकर वो भजन करने लगते हैं, सेवा करने लगते हैं। लेकिन सबसे मजे की बात है कि वैष्णवों को देखकर हमारी भक्ति में श्रद्धा बढ़ती है, लेकिन उसी वैष्णव सत्संग में वैष्णवों के साथ ही आदान प्रदान में कुछ उतार चढ़ाव के कारण हमारा उत्साह कम होता है और श्रद्धा भी क्षीण होती है। तो इसलिए वैष्णव ही आकर्षित करते हैं और कई बार वैष्णवों के कारण ही हम थोड़ा पीछे भी हटने का विचार करते हैं। लेकिन जो कुछ भी हो, हम वैष्णव सेवा के तत्व को बाईपास नहीं कर सकते। तो इसलिए कुछ भी हो, जितना अधिक हम इस वैष्णव सेवा और वैष्णव सत्संग के तत्व को भली भांति समझकर पचा पाएंगे, उस आधार पर, उस पाचन के आधार पर हमारी भक्ति की ऊर्जा प्रकट होगी। क्योंकि जब पाचन ठीक नहीं होता तो शरीर में ऊर्जा प्रकट नहीं होती, और जब ऊर्जा नहीं आती तो लगता है कि अरे थक गए हैं। तो इसलिए यहां पर ये कह रहे हैं, सही सब लोक होया बौले र प्राय, कृष्ण को ही नाचे कांदे गोड़ा गोड़ी जाए। तो महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे थे तो महाप्रभु के इस आनंद को देखकर सब लोग पागलों की तरह नाच रहे थे, और नाचते नाचते इतना उनका उन्माद बढ़ गया कि धरती पर गिरकर वो गोल गोल घूमने लगे। और वो जो गुप्तचर आया था, वो गुप्तचर वापस जाकर गवर्नर को ये सब बता रहा है, ये सब मैंने अपने आंखों से देखा, मेरे सामने ये सब कुछ चल रहा था, आपको देखकर विश्वास नहीं होगा। तो गवर्नर बोल रहा, क्या बात कर रहे हो यार, इतने प्रसन्न लोग इतना आनंद में, थोड़ा मुस्कुराना तो ठीक है, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, इतना आनंद बढ़ गया, आनंद की पराकाष्ठा में धरती पर लौट रहे हैं, सही बोल रहे हो क्या, कि क्या बात कर रहे हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। तो इसको सुनकर गुप्तचर कहता है, कोही बारा कथा नोहे देखिले से जाने, तोहर प्रभाव तार ईश्वर करे माने। कहते हैं कि देखो गवर्नर साहब, केवल मेरी बातों को सुनकर आप नहीं समझ सकते, ये कही बार कथा नहीं, कथा सुनकर श्रद्धा करने वाली बात नहीं है, देखिले से जाने, जाके देखोगे ना तब समझोगे, डाउट मत करो, जाके देख के आओ। हाँ, और ताहार प्रभाव, उनके प्रभाव को देखकर, कौन, महाप्रभु के प्रभाव को देखकर, तार ईश्वर करे माने, मेरे मन में तो पूर्ण श्रद्धा है, वो चमत्कारी आकर्षक पुरुष ईश्वर ही हो सकते हैं और कोई नहीं है। ये गुप्तचर के मन में महाप्रभु को देखकर इतनी श्रद्धा उत्पन्न हो गई, अन्यथा इतना आकर्षण, इतना आनंद, ऐसी दिव्यता संभव नहीं। तो इसलिए इस प्रसंग से सिद्ध होता है, द पर्पस ऑफ इस्कॉन एंड महाप्रभुज मूवमेंट इज ट्रांसफॉर्मिंग हार्ट, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, हृदय में परिवर्तन। अभी अनर्थों से भरा हुआ हृदय, अनर्थ अर्थात स्वार्थ, और अनर्थ निवृत्ति अर्थात निस्वार्थ सेवा। स्वार्थ पूरित इंद्र तृप्ति से परिवर्तित करके हमें लोगों के हृदय में निस्वार्थ सेवा भाव उत्पन्न करना है, और इस परिवर्तन के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये हरिनाम संकीर्तन तैयार किया। পরীক্ষা করিতে গোপাল কইলা আজ্ঞাদান, পরীক্ষা হইলা শেষে হইলা দয়াবান, বহু পরিশ্রম চন্দন রেমুনা আনিলা, আনন্দ বড়িলা মনে দুঃখ ন গণিলা। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী উস চন্দন কো ইতনা কষ্ট করকে লেকে আয়ে, হর প্রকার কে স্বার্থ কি ভাবনা কো তিলাঞ্জলি দেকর মন মে কেবল শ্রী গোপাল কো সন্তুষ্ট করনে কা ভাব লেকর চলে। উস পরীক্ষা মে উত্তীর্ণ করনে কে পশ্চাৎ গোপাল উন পর সন্তুষ্ট হুয়ে, অর ক্যোঁকি ও গোপাল কে বিরহ মে যাকর সেবা কিয়ে ইসলিয়ে সন্তুষ্ট হোকর গোপাল নে গোপিয়ো কা অর রাধা রানী কা শ্রীকৃষ্ণ কে বিরহ মে ক্যা ভাব হ্যায় ইস সাক্ষাৎকার মে উনকো প্রবেশ দিয়া। অর্থাৎ জিস স্তর কি পরীক্ষা হম উত্তীর্ণ করেঙ্গে উস স্তর কে উত্তরদায়িত্ব মে হম প্রবেশ কর সকতে হ্যায়। আগর আইএএস কা এগজাম পাস নাহি করেঙ্গে তো ভারতীয় প্রশাসন মে কৌন হমকো ঘুসনে দেগা। উসি প্রকার জব তক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর উনকে ভক্তোঁ কে দ্বারা দিয়ে গয়ে পরীক্ষাও কো হম পাস নাহি করেঙ্গে তো তব তক ব্রজবাসিয়ো কা শ্রীকৃষ্ণ কে সাথ সেবা ভাব আর আদান প্রদান আর উনকি ভাবনা ক্যা হ্যায় উস অনুভব কো কেসে সমঝ সকতে হ্যায়, ও তো কেবল মধু কো কাঁচ কে বাতল কে বাহার চাট চাট কর থোড়ি হম সমঝ সকতে হ্যায়। ইসলিয়ে হম লোগ হৃদয় পরিবর্তন আর কুছ অনুভব লেনে আয়ে হ্যায় আর উস অনুভব কে অনুকূল জো কুছ ভি হো উসে স্বীকার করনা চাহিয়ে। সরস্বতী ঠাকুর কে পাস এক হেডমাস্টার আয়ে আর বোলে মুঝে দীক্ষা চাহিয়ে। সরস্বতী ঠাকুর নে কাহা তুমারি ইতনি লম্বি দাড়ি হ্যায় উসকো তো কম সে কম নিকাল কে আও। ও বলে আরে ইয়ে দাড়ি তো মেরে পুরে গাঁও কা গৌরব কা বিষয় হ্যায়, গাঁও কি সবসে লম্বি দাড়ি মেরি হ্যায়, ইসকো মে নিকালুঙ্গা তো মেরা আইডেন্টিটি বদল যায়গা। তো সরস্বতী ঠাকুর নে কাহা ঠিক হ্যায় জব ভি আপ তৈয়ার হো কম সে কম ইতনা করনে কে লিয়ে তব হম দেখেঙ্গে। তো সোচ লো কি কৃষ্ণ জ্যাদা প্যারে হ্যায় ইয়া তুমারি দাড়ি। হেডমাস্টার চলে গে, আগলে হফতে ও সাইকেল চলা রহে থে, সাইকেল সে নিচে গিরে আর গিরে তো সাইকেল কে পহিয়ে মে উনকা দাড়ি অটক গিয়া। গাঁও ওয়ালে ঘের লিয়ে আর বোলে আপকো নিকালনা হো তো একই তরিকা হ্যায় দাড়ি কাটনি হোগি। ও বোলে ঠিক হ্যায় কর দো ক্যা করে। দাড়ি নিকালনে কে বাদ সরস্বতী ঠাকুর কে পাস আয়ে বোলে কৃষ্ণ নে আপনি ব্যবস্থা কর দি। তো ইসলিয়ে দব হম লোগ আত্মসমর্পণ কি বাত করতে হ্যায় উসকা অর্থ ইয়ে হ্যায় কি হম আপনে বিচারোঁ কো শনই শনই দূর করনে কা বিচার করতে হ্যায় আর দূসরে বিচারোঁ কো দূসরোঁ কে বিচারোঁ কো হমারে বিচারোঁ কে উপর হাবি হোনে কি অনুমতি দেতে হ্যায়। ইসলিয়ে ইসকো কাহা গিয়া হ্যায় স্বতন্ত্রতা রত্ন, জো হমারা হমারি স্বতন্ত্রতা হ্যায় কেসে হম পরতন্ত্র হোনে কে লিয়ে তৈয়ার হোতে হ্যায়, ইয়ে ভক্তি কা প্রসেস হ্যায়। আগর ইয়ে বহুত অধিক কঠিন লাগতা হ্যায় তো কর্ম কা মার্গ উপলব্ধ হ্যায়, জ্ঞান কা মার্গ উপলব্ধ হ্যায়, যোগ কা মার্গ উপলব্ধ হ্যায়, উসকা পালন কিজিয়ে। আর ইসকো গীতা মে যোগা ল্যাডার কাহা হ্যায়, ধীরে 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 শুদ্ধ হোকর ভক্তি কে লিয়ে হম তৈয়ার হোঁ, ক্যোঁকি ভক্তি মে লম্বে সময় তক সেবা করনে কে লিয়ে ইয়ে বড়া আবশ্যক হ্যায় কি হম দূসরো কে ইচ্ছা কে অনুসার আপনি ইচ্ছা কো ঢালনে কা প্রয়াস করেন। আর ইয়ে ইতনা আসান কার্য নহিঁ হ্যায়, পূজল রাগপথ গৌরব ভঙ্গে। ইসলিয়ে কাহা গিয়া হ্যায় সরস্বতী ঠাকুর কহতে থে জ্ঞানাবলম্বকা কেচিত কেচিত কর্মাবলম্বকা বয়ম তু হরিদাসানাম পাদ ত্রাণ অবলম্বকা। কই লোক জ্ঞান কা অবলম্বন করতে হ্যায়, কই লোক কর্ম কা অবলম্বন করতে হ্যায়, লেকিন হম তো বয়ম তু হরিদাসানাম হম হরি কে দাস হ্যায় পাদ ত্রাণ অবলম্বকা। বৈষ্ণবো কে চরণ কমলো পর জো জুতে হ্যায় উস পাদুকা কে পাদুকা মে জো রজ হ্যায় উসকো আপনে মস্তক পর ধারণ করনা চাহতে হ্যায়, অর্থাৎ উনকে ইচ্ছা অনুসার উনকে ইচ্ছা কো হি সর্বোপরি মান কর হম চলনা চাহতে হ্যায়। তো ইসলিয়ে জব হম भक्ति में आते हैं और भक्ति में आने के पश्चात इस भाव को स्वीकार करेंगे, तब शनै शनै भक्ति का अनुभव हम प्राप्त करने लगेंगे। एक बार मैं किताब वितरण कर रहा था, किसी को गीता दिखाया, वो कहता है ये गीता है मेरे पास, एक पिताजी ने ली, एक दादाजी ने ली। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, ये मंदिर का कार्ड है, प्रसाद है। मुस्कुराकर प्रणाम किया मैंने, अगले बोगी में चला गया। वो पीछे पीछे आया मेरे, बोले अरे स्वामी जी एक गीता चाहिए। बोले यार अभी तो आपको मैंने गीता दिखाया, तो बोले एक पिताजी ने ली है, एक दादाजी ने ली, दो पहले से, ये तीसरा क्यों चाहते हो? वो बोला पिछले 6 महीने से मेरे जीवन में बहुत परेशानी चल रही है, पिछले 6 महीने से मेरा बॉस मुझे गाली दे रहा है, मेरे पिताजी मुझे गाली दे रहे हैं, मेरे पत्नी मुझे गाली दे रहे हैं, सब मुझे गाली दे रहे हैं। आप पहले व्यक्ति हो पिछले 6 महीने में जो मुझे देखकर मुस्कुराए हो, इसलिए आपके हाथ से गीता चाहता हूं। मैंने कहा मालूम होता तो जोर से हंसता और पूरा भागवतम पकड़ा देता है। अर्थात कलयुग में लोग इतने परेशान हैं। एक हमारा भक्त स्वाभाविक रूप से हमेशा मुस्कुराता रहता है, प्रसन्न रहता है, नेचुरली हैप्पी। उसका बॉस उसको एक दिन बुलाया, बोला कुछ प्रॉब्लम है क्या? बोले बोले सर क्यों क्यों पूछ रहे हो, हंसते रहते हो, खुश रहते हो? तो कलयुग ऐसा युग बन गया कि खुश रहना मतलब अबनॉर्मल है। कई परेशान लोग मिलकर प्रसन्न भक्त को देख के बोलते पागल है ये। ये कलयुग का मापदंड बन गया है। तो इसलिए ये गवर्नर भी स्वीकार नहीं कर रहा था, इतने प्रसन्न लोग हैं। तो ये कहते कही बार कथा न है कि केवल सुनाकर देखले से जानी, आप जब देखोगे तभी समझोगे। और इसलिए ताहार प्रभाव तार ईश्वर कोरी मानी, मैं तो उनको ईश्वर मान लिया हूं। तो गवर्नर के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो गवर्नर अपने सचिव को बुलाता है और सचिव को बुलाकर कहता है तुम जाओ और वहां पर जो बड़े व्यक्ति हैं प्रभावशाली, जिनके कीर्तन को सुनकर हमारा गुप्तचर इतना प्रभावित हो गया, उनको ईश्वर कहता है, तो जाके बोलो कि उनका मैं दर्शन करना चाहता हूं, अनुमति है कि नहीं। तो अर्थात गवर्नर के हृदय में ये भावना जागृत हो गई, इच्छा जागृत हो गई। तो गवर्नर का सचिव जाता है और सचिव को देखकर जो महापात्र प्रताप रुद्र महाराज का, उसके मन में शंका उत्पन्न हो जाती है, क्यों आया है? अस्त्र शस्त्र के साथ आक्रमण करने आया है क्या? कि क्योंकि दोनों तरफ शत्रुता थी। लेकिन वो सामने से बोला नहीं, मैं बिना कोई अस्त्र शस्त्र के आया हूं, संदेश लेके आया हूं गवर्नर का। बोला अच्छा अच्छा ठीक है। तो संदेश आके कहता है कि वास्तव में हमारे जो गवर्नर साहब हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु का केवल दर्शन करना चाहते हैं। हम लोग 2-4 लोग आएंगे बिना शस्त्र के, क्या आप दर्शन करने की अनुमति दोगे? तो जैसे ये कहा, एतक ही से चर हरि कृष्ण गाए, हौसे कांदे नाचे गाए बौलेर प्राय। तो जब गुप्तचर पागल की तरह नाचे नाच कर हरिनाम संकीर्तन वगैरह कर रहा था, उसको देखकर जब भेजा उनको यहां पर, शुनि महापात्र कोहे होइया विस्मय, मद्यप यवनेर चित ऐछे के करे। ये महापात्र इसको सुनकर विस्मित हो गया, मद्यप यवनेर चित्त ऐछे के करे। अरे जो निरंतर दारू के नशे में धूत रहता था, वो यवन के बारे में ये लोग सब जानते थे। गवर्नर का मेन काम प्रशासन सा और दूसरा काम था पीकर मस्त रहना। मद्यप यवनेर चित्त, जो मांसाहार में व्यस्त है, यवन है, जो मदिरा पान निरंतर करता रहता है, मद्यप यवनेर चित्त ऐच्छे के करे। उनके चित्त में ऐसी क्रांति कैसे कर दी? सोचने लगे और फिर उन्होंने विचार किया, आपने महाप्रभु तारे मन फेराइला दर्शने स्मरणे यार जगत तारिला। कहे कि इसमें कोई आश्चर्य की क्या बात है, भले उस गवर्नर ने श्री चैतन्य महाप्रभु का साक्षात दर्शन नहीं लिया, लेकिन महाप्रभु की महिमा की इतनी शक्ति है कि केवल उनका कोई दूर से दर्शन करे या दर्शन भी न करे, केवल स्मरण मात्र करे, केवल महाप्रभु का स्मरण करके और उनके लीलाओं का श्रवण करके लोगों का हृदय परिवर्तित हो सकता है। दर्शन स्मरण तार जगत तारिला, तो महाप्रभु की ऐसी शक्ति है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय परिवर्तन की ऐसी शक्ति है कि जो लोग अब श्री चैतन्य महाप्रभु तो 500 वर्ष पूर्व आए, लेकिन आज के तारीख में भी केवल महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण करने मात्र से हृदय परिवर्तन निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं, जैसे इनका हुआ। मायापुर में एक भक्त किसी के साथ रूम शेयर कर रहे थे, इंडिया के डिवोटी थे, और वो जो रूम शेयर कर रहे थे वो पाश्चात्य देश के थे, और रात को सोने के पहले वो गुड नाइट वाला वो लगा रहे थे मॉस्किटो रिपेलेंट। तो वो जो पाश्चात्य देश से भक्त था वो कहता है इसको मत लगाओ, इससे मच्छर को चोट पहुंचेगी, थोड़ा मॉस्किटो नेट लेके आके लगाओ। ये भक्त बोला अरे बापरे ये कौन है भाई, मतलब करुणा की ये तो सीमा हो गई। तो फिर वो गया मच्छरदानी लाके लगा दिया, और मच्छरदानी में लेटते लेटते मन में जिज्ञासा थी, बोले आप हो कौन और आपका थोड़ा बैकग्राउंड बताओ। तो वेस्टर्न डिवोटी बोलने लगा मैं क्रोएशिया से हूं, और क्रोएशिया में मैं पहले सोल्जर था, और क्रोएशिया में कई साल तक वॉर चला, हर रोज 100-100 लोगों को मार डालता था। तो ये भक्त उठ के बैठ गया। तो भक्त ने कहा नहीं पहले, अभी नहीं। तो बोले फिर ये कैसे हो गया। फिर बोले एक दिन की बात है, मैं किसी को मारने के लिए चला और उसके सर पर बंदूक रखकर उसको मारने ही वाला था, लेकिन उसके मुख पर बड़ी शांति थी, तो उसको देखकर मैं भी विस्मित हो गया और बोलने लगा मैं तुमको मार डालने वाला हूं, तुमको डर नहीं लगता क्या। और वो व्यक्ति बोला तुम मुझे नहीं मार सकते। मुस्कुरा के बोला, बड़े स्टाइल में बोला। तो मैं बोला यार ये क्या बोल रहा है, नहीं मार सकते, हर रोज 100-200 लोगों को मार देते, क्यों नहीं मार सकते, एक गोली चलाऊंगा मर जाओगे। नहीं तुम मुझे नहीं मार सकते। तो इसका कौतूहल और बढ़ा, उसको समझ गया ये थोड़ा अलग पार्टी है ये। उसको लेके गया और लेके जाकर एक कमरे में बंद किया, और दूसरे लोग यहां वहां मारकाट चल रहा था, तो बोले क्यों नहीं मार सकते बताओ। बोले बिकॉज आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल। तो ये तुरंत दो चेयर लगा दिया। बोले ये क्या, थोड़ा और बताओ डिटेल में। 10 मिनट में उसने 6 सेशन DYS सुना दिया। सुन के इसके हृदय में बड़ा परिवर्तन आया, और ये भी उससे गीता ले लिया, इसका एड्रेस ले लिया। ये वहीं पर डिवोटी थे, और ये सोल्जर जो है गुप्त रूप से जा जाके एसोसिएट करने लगे, भक्त बने और मंदिर में ज्वाइन हो गए। तो ये बोलने लगे कि मेरा उदाहरण देख के समझो कि महाप्रभु के मिशन की क्या करुणा है। जो व्यक्ति हर रोज 100-100 लोगों को बिना विचार किए अंधाधुन मृत्यु के घाट उतार देता था, जिसने खून की नदियां बहाई है, महाप्रभु की कृपा से अब वो एक मच्छर के मरने के विषय में विचार कर रहा है, ये महाप्रभु की कृपा है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन ये एक ऐसा माध्यम बताया जिसके माध्यम से ऐसा हृदय परिवर्तन संभव है। हम लोग ने भी अपने मंदिर में, जब चौपाटी मंदिर में एक दिन राधानाथ महाराज मुझे बुलाकर बोले हमारे मंदिर में बहुत गर्मी होती है समर के सीजन में और कई दूसरे सीजन में। टेम्पल हॉल में हम लोग एसी लगाएंगे, एयर कंडीशन। तो आप में से कई लोग चौपाटी टेम्पल में प्रोग्राम में बैठे होंगे जब एसी चलता है, तो ये 2005-06 की बात है। तो मैंने कहा एसी महाराज, वैसे भी लोग लेक्चर में सो जाते हैं, एसी लगाएंगे तो बिस्तर लेके आएंगे। महाराज ने कहा आलोचना मत करो इसे, भक्त लोग बेचारे इतना थके हारे आते हैं, शांति से उनको एसी में सुनने मिले, कोई कष्ट न हो, वी शुड प्लीज द डिवोटीज। मैं कन्विंस नहीं था, मुझे लगा कि बहुत ज्यादा हो गया, मतलब इतना भी करने की क्या जरूरत है, वैसे भी आ ही रहे हैं, प्रसाद भी फ्री है, दर्शन भी फ्री है, और ऊपर से एसी भी लगाओ तो थोड़ा ज्यादा हो रहा था। लेकिन महाराज ने कहा नहीं लगाएंगे। तो फिर हमने एक वेंडर फाइनल किया, और वो एसी वाला वेंडर जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था हमने, इट हैज टू बी कॉन्स्टेंटली एट 24, इट कैन नॉट एक्सीड 24 डिग्री, एंड लास्ट में कुछ वर्ड हमने जोड़ दिए थे, इवन ड्यूरिंग कीर्तन, इवन ड्यूरिंग कीर्तन। तो उन लोगों ने समझा नहीं क्या है, पता नहीं, साइन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, इंस्टॉल हो गया। तो लास्ट का हमने 5-7 लाख बचा के रखा था कि पूरा फुलफिल होने के बाद अच्छी तरह से अगर वो फंक्शन करे तब हम वो रिलीज करेंगे। तो लेक्चर के समय वो था, हम लोग घूम रहे थे उसके साथ, चेक कर रहे थे, बोला हाँ बराबर 23 डिग्री दिखा रहा है। वो बड़ा खुश था, देखो सक्सेस हो गया, सक्सेस हो गया। मैंने कहा रुको। फिर संडे फीस्ट में महाराज खुद उस समय कीर्तन लीड करते थे, तो लास्ट का लेट अस हैव कीर्तन करके सब लोग उठे। मैंने कहा अब देखना, अब कीर्तन के बाद धम 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 नाचने लगे, सबका पसीना निकलने लगा, सीधा वो ऊपर गया 26 डिग्री। मैंने कहा अब देखो क्या हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि 26 डिग्री कैसे हो गया। फिर गया, जितना हो सकता था अपने मशीन के कैपेसिटी के हिसाब से सारा सेटिंग्स कर दिया, लेकिन कीर्तन में वो कभी 24 पे टिका ही नहीं, सीधा 26 पे, और हम लोग भी रिमेनिंग पेमेंट नहीं दिए। पूरा नहीं, 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल के बाद पूरा कंट्री हेड को लेके आ गया, बोला सर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, उस समय समझे नहीं ये कीर्तन क्या है, हम लोग सरेंडर होते हैं। आपका कीर्तन महान है लेकिन हमारी नौकरी चली जाएगी, ये रिलीज कर दो। तो फिर हमने भी महाप्रभु के करुणा को भाव आगे रखकर रिलीज कर दिया। लेकिन कीर्तन जो महाप्रभु ने हम लोगों को दिया है, ये हरिनाम संकीर्तन हृदय के परिवर्तन के लिए सबसे मूल उपाय है। इसलिए यहां पर कहते हैं, आपने महाप्रभु तार मन फिराइला, दर्शने स्मरणे जार जगत तारिला। और तब महापात्र गवर्नर के सचिव को कहते हैं, ठीक है गवर्नर को आने दीजिए, लेकिन कोई अस्त्र शस्त्र के साथ नहीं आएगा, और डिवोटी का ड्रेस पहन के आएगा। इसने भी छोड़ा नहीं, मौका मिला तो क्यों छोड़े। तो जाकर संदेश देता है, फिर गवर्नर आता है वैष्णव वस्त्र धारण करके, और दूर से महाप्रभु को देख के प्रणाम करता है, और प्रणाम करके हाथ जोड़कर महाप्रभु के सामने बड़े ही विनम्र भाव में व्यक्त करता है, अधम यवना कुले के न जन्म होइला, विधि मोरे हिंदू कुले के न जन्मइला। कहते हैं कि मेरा अधम कुल में जन्म क्यों हुआ, और विधि मोरे डेस्टिनी या भाग्य के अनुसार हिंदू कुल में मेरा जन्म क्यों नहीं हुआ। हाँ, विधि मोरे हिंदू कुले केन न जन्मइला। तो इसलिए जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं उसके संस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जैसे कोई हिंदू परिवार में जन्म लेता है तो अपने आप गंगा जल, तुलसी, पूजा पाठ, इसके प्रति एक स्वाभाविक भाव उत्पन्न हो जाता है। एक राजा अपने मंत्री के साथ जा रहे थे और अचानक मंत्री प्रणाम किए एक वृक्ष को देखकर। राजा बोलते, हे किसको प्रणाम किया? बोले, तुलसी का वृक्ष था, इसको प्रणाम किए। तो मंत्री बोलता, ये मेरी मां है। तो राजा बोलता, अरे तुम लोगों का कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं कितनी माताओं को पाल के रखा है। फिर आगे गए, फिर मंत्री और एक के सामने प्रणाम किए। बोले, ये कौन है भाई, ये क्यों प्रणाम किया? बोले, ये मेरे बाप हैं। बोले, ये क्या है, तुम कभी मां कभी बाप ऐसा बोलते रहते हो? गुस्से से राजा ने सीधा उस वृक्ष को पकड़ा और उखाड़ने का प्रयास किया। वो खुजली वाला वृक्ष था। राजा के पूरे शरीर में खुजली हो गया, इतना जोर से खुजलाने लगा। वो बोला, अरे बचाओ 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 बचाओ। तो मंत्री बोलता है, चलो कोई बात नहीं, यहां पर जाओ, हमारी दूसरी मां है, दूसरी मां का आश्रय लोगे तो बच जाओगे। बोले, कौन है मां? गो माता। गोबर पड़ा हुआ था, गोबर लेके आए और पूरे शरीर पर लगाए, लेप दिया ऊपर से नीचे तक पूरा। गोबर से ऊपर से नीचे तक जबरदस्त फैशन कर दिया उनका और उसकी खुजली दूर हो गई। बोले, अरे तुम्हारी मां तो जबरदस्त है, लेकिन अब मैं कैसे अंदर जाऊंगा महल में ऐसे, अब कुछ तो करो। बोले, हमारी तीसरी मां एक और है, कौन? गंगा मैया। छलांग लगाओ, स्नान करो, ठीक हो जाओगे। तो इस प्रकार अगर हमारे संस्कार अनुकूल होंगे तो पहले ही कुछ न्यूनतम भाव उत्पन्न होते हैं गंगा के प्रति, तुलसी के प्रति और शास्त्रों के प्रति, मंदिर के पूजा पाठ के प्रति। तो ये कहते हैं, हिंदू होइले पायताम तोमार चरण सन्निधान, व्यर्थ मोर एई देह जाऊ का परान। अगर मैं हिंदू कुल में जन्म लेता तो कम से कम पहले से ही बचपन से आपके चरणों का मुझे दर्शन प्राप्त होता। इसलिए आपके चरणों का मुझे दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, व्यर्थ मोरा एई देह, मेरा यह शरीर व्यर्थ हुआ, जाऊ का परान, और मैं केवल इस शरीर को छोड़ना चाहता हूं। ये शरीर जो है धारण करने योग्य नहीं, क्योंकि आपकी भक्ति मुझे प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार वो गवर्नर ने महाप्रभु के सामने ऐसे विचार व्यक्त किए। इसको सुनकर महापात्र, प्रतापरुद्र महाराज का महापात्र, ये तो आनंद से भाव विभोर हो गया और कहता है, एतशुने महापात्र आबिष्ट होइया प्रभु के कोरेन स्तुति चरणे धाया। इतना आविष्ट होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, चंडाल पवित्र नाम श्री नाम श्रवणे हे न तोमार ए जीव पाइला दर्शने। हे प्रभो, शास्त्र के अनुसार ये पहले ही प्रमाणित है कि आपका कोई शुद्ध नाम का श्रवण करेगा तो चंडाल भी भले होगा तो वो पवित्र हो जाएगा। चंडाल पवित्र यार श्री नाम श्रवणे, यन्नाम धेय श्रवण नु कीर्तनात् यः प्रव्रणात् श्रवणात् अपि क्वचित् श्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते कुत पुनः किं भगवन्नु दर्शनात्। देवहूति माता कहती है कि जो भगवान का नाम लेगा और उससे शुद्ध होगा, भले वो निम्न परिवार में भी क्यों न जन्मा हो, लेकिन उसके अंदर भी यज्ञ अनुष्ठान करने की शक्ति और सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। इहार ये एही गति इथे की विस्मय तोमार दर्शन प्रभाव एही मत होए। तो महापात्र कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की स्तुति करते हुए कि केवल हरिनाम करने पर इतना परिवर्तन जिसका हो सकता है, अगर आपका साक्षात ये गवर्नर दर्शन कर रहा है तो परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए इसमें कोई विस्मयजनक बात नहीं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु उस गवर्नर को अपने निकट बुलाकर उनको आलिंगन करते हैं और आलिंगन करके उनको आश्वासन कराते हैं। तो बे महाप्रभु तारे कृपा दृष्टि कोरी आश्वासिया कोहे तारे कोह कृष्ण हरी। अपनी कृपा दृष्टि प्रदर्शित करके महाप्रभु उसको कहते हैं आप कृष्ण और हरि का नाम लो, और वो उच्च स्वर में कृष्ण और हरि का नाम लेते हुए उनका संपूर्ण शरीर दिव्य कृष्ण प्रेम के उन्माद से विस्फोटित होने लगता है और तब नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर महाप्रभु के चरणों को धारण करके वो कहता है सेई कोहे मोरे जदी कोर अंगिकार एक आज्ञा देह सेवा कोरी जे तोमार। वो कहते हैं महाप्रभु आपने मुझे शुद्ध प्रेम तो दे दिया लेकिन आपने मुझे स्वीकार किया कि नहीं, इस बात का प्रमाण कब होगा। सही कोहे मोरे जदी कोर अंगीकार, क्या आपने मुझे अंगीकार स्वीकार किया। स्वामी जब सेवा सेवक को स्वीकार करता है उसका प्रमाण क्या है, एक आज्ञा देह सेवा कोरी जे तुमार। जब कोई स्वामी सेवक को सेवा देता है, जब आज्ञा देता है, पाया जार आज्ञा धन ब्रजर वैष्णवगण तारा मध्य मुख्य होरिदास चैतन्य बिलास सिंधु कल्लोलेर एक बिंदु ताहा कणा कोहे कृष्णदास। तो यहां पर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मुझे ब्रजवासियों ने मिलकर आज्ञा दी है, उन ब्रजवासियों के मुझे पाया जार आज्ञा धन, आज्ञा रूपी धन मिली है, तो वैष्णवों की आज्ञा प्राप्त करना वो हमारे लिए धन है। लेकिन जब कोई हमें आज्ञा देता है हमको लगता है ये आज्ञा गन है कि हमारे सर पर रखकर कह रहे हैं ये करो ये करो, नहीं ये बहुत बड़ा धन है। इसलिए राधानाथ महाराज कहते हैं सर्विस इज नॉट अ बर्डन इट इज अ प्रिविलेज, सर्विस टू द वैष्णवास इज नॉट अ बर्डन इट इज अ प्रिविलेज, ये बहुत बड़ा धन है हमारे लिए। तो इसलिए यहां पर कहते हैं तबे महाप्रभु तारे कृपा दृष्टि कोरी सही कोहे मोरे जदी कर अंगीकार, एक आज्ञा दे, एक आज्ञा दीजिए आपके सेवा के लिए। तो श्रील प्रभुपाद बड़ा सुंदर लिखते हैं हरिनाम संकीर्तन करते हुए अगर आपके मन में यह प्रश्न उठता है क्या मैं हरिनाम से शुद्ध हो रहा हूं, एम आई गेटिंग प्यूरिफाइड बाय दिस चैंटिंग, तो उसका सबसे प्रमुख लक्षण क्या है। इसका सबसे प्रमुख लक्षण है कि आप प्रचुर मात्रा में सेवा में पूर्ण उत्साह के साथ जुट जाओगे। जब आपके झोली में सेवा आकर गिरेगी आप उत्साह पूर्वक उस सेवा के कण को बटोरोगे, आंतरिकरण करोगे और भक्तों को संतुष्ट करने का प्रयास करोगे। प्रभुपाद लिखते हैं प्रभुपाद के शब्दों में When one engages enthusiastically in the Lord's service, when one engages enthusiastically in the Lord's service, it is to be understood that he is reaping the results of chanting the holy names of Krishna. He is reaping the results of chanting the holy names of Krishna. आप लोग नौकरी में हो, कई लोग नौकरी में, अगर आपको कल बॉस बोले सोमवार को हम आपका अगस्त महीने से पगार डबल कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, आप क्या बोलोगे। नहीं सर ऐसा मत करो क्योंकि त्रिनादपि सुनिश्चिन, मैं गर्वित हो जाऊंगा, मत करो। आप बोलोगे, बोले नहीं नहीं जरूर नो प्रॉब्लम, बोलेगा उसके अगले महीने और डबल करेंगे, कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई आपको पगार डबल करने की बात करता है आप तुरंत तैयार हो जाते हो, क्यों, क्योंकि ये तो आपके नौकरी का पुरस्कार है, तो इसलिए जब हम नाम जपते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, मुझे क्या दो, मुझे क्या दो, मुझे क्या दो। और कितनी बार बोलते हो, दो बार बोलते हो, दो मिनट बोलते हो, दो सेकंड बोलते हो, या दो घंटे बोलते हो। आज तक आप इसको छोड़कर अपने किसी मित्र को दो घंटा कंटिन्यूअस एक ही व्हाट्सएप मैसेज भेज के देखो, आ रहे हो क्या, 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 वो आपको जो है ब्लॉक कर देगा, वे पागल आदमी है, फोन करके आज प्रोग्राम में आ रहे हो क्या, आ रहे हो क्या, लेकिन आ रहे हो क्या, एक ही मैसेज दो घंटा। तो हम लोग भगवान को दो घंटा जीवन भर बोल रहे हैं, सेवा दीजिए ना, सेवा दीजिए ना, सेवा दीजिए ना, सेवा 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 दीजिए दीजिए दीजिए, अरे दे रहा हूं भैया, दीजिए दीजिए, अरे दे दीजिए दीजिए दीजिए, और जब आती है मैं नहीं करना चाहता। तो सोचो दो घंटा बोलने के बाद अगर आप किसी को कुछ दो और फिर बोले नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, बोलेगा नालायक क्या है ये, वो भगवान कंफ्यूज हो जाते हैं यार, इसके पास जाऊं कि नहीं जाऊं। तो इसलिए जब सेवा आए और फिर बोलो मुझे नहीं, इसको अपनी सेवा में लगाइए, तो भगवान ब्लॉक कर देते हैं। अब ब्लॉक जब करते हैं तो टेस्ट निकल जाता है और फिर लगने लगता है ये क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप जो बोल रहे हो उसका जब परिणाम मिल रहा है आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे। तो इसलिए यहां पर ये जो कह रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण है, एक आज्ञा देह सेवा करिजे तुमार, दिस इज द सिम्टम ऑफ प्यूरिफिकेशन, दिस इज द इफेक्ट ऑफ चैंटिंग होली नेम, यू गेट सेवा एंड यू लाइक टू बी एंगेज्ड इन दैट सेवा। फिर आगे बड़ा महत्वपूर्ण शब्द कहते हैं, सो ये सब सिम्टम्स प्रभुपाद जी वर्णन कर, महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ बीइंग प्यूरिफाइड। फर्स्ट, अटेंटिव चैंटिंग, सेकंड, अटेंटिव इन सेवा, अब तीसरा बता रहे हैं, तीसरा लक्षण क्या है, गो ब्राह्मणा वैष्णव हिंसा करियाछि अपार, सही पाप होते मोर हौ का निस्तार। तो आगे ये गवर्नर हाथ जोड़कर महाप्रभु से कहते हैं, गो ब्राह्मण वैष्णव हिंसा करियाछि अपार, सही पाप होते मोरा, ऐसे पाप से मोरा हौका निस्तार, मुझा मेरा उद्धार कीजिए। क्या क्या पाप मैंने किए हैं, गायों के प्रति अपराध किया, कैसे, काटकर, गायों के शरीर को काटकर मैंने अपराध किया, गो हिंसा कहते हैं, और गो ब्राह्मण वैष्णव हिंसा करियाछि अपार, और ब्राह्मण वैष्णव हिंसा भी मैंने किया है, गो हिंसा तो किया है, ब्राह्मण वैष्णव हिंसा भी किया है अपार। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, गो हिंसा तो समझ में आता है गाय को काटना, ब्राह्मण वैष्णव हिंसा क्या है, प्रभुपाद कहते हैं ब्राह्मण वैष्णव हिंसा अर्थात ब्राह्मण और वैष्णवों का अपमान करना उनके काटने के बराबर है, टू इंसल्ट अ ब्राह्मण एंड अ वैष्णवा इज एज सिंफुल एज किलिंग अ काउ, गो ब्राह्मण वैष्णव हिंसा करियाछि अपार। तो इसलिए टू टाइप्स ऑफ सिन, किलिंग अ काउ एंड इंसल्टिंग अ ब्राह्मण एंड अ वैष्णव, ये मैंने बहुत किया है, और इसीलिए सही पाप होते मोरा हौ का निस्तार, इस पाप से मेरा उद्धार कीजिए, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए श्रीपाद रामानुजाचार्य 12 प्रकार के वैष्णव अपराध वर्णन करते हैं। ये 12 प्रकार इसलिए नहीं कि हम लोग को आइडिया मिले कि कैसे हम करें, लेकिन कैसे हम बचें? पहला, जन्म निरूपण, अर्थात किसी के जन्म के आधार पर कि ऊंचे परिवार में है नीचे परिवार में है। दूसरा, शरीर निरूपण, वैष्णव को सोचना कि ये हनुमान जी तो बंदर हैं या गरुड़ तो ईगल हैं ऐसा। भाव निरूपण कि ये ध्रुव महाराज तो 5 वर्ष का है, इसको क्या पता, और सुरुचि ने उसके प्रति अपराध किया। भाव निरूपण अर्थात एज फैक्टर को देखकर सोचना, ये तो छोटा है इसको क्या पता, लेकिन वो वैष्णव है, या फिर हिरण्यकश्यप और प्रहलाद। आश्रम निरूपण, ये वैरागी है, ज्यादा श्रेष्ठ है, ये है वो है, हर आश्रम को देखकर उसमें परिवर्तन ढूंढना। फिर अव्यय निरूपण, अव्यय निरूपण अर्थात किसी के शरीर में कोई कमी हो तो उसको देखकर, जैसे रूप गोस्वामी आंखें बंद करके स्मरण कर रहे थे राधा रानी को, कृष्ण ऊपर फूल तोड़ने के लिए ऊंचा कर रहे थे, तब राधा रानी जैसे ही डाली को पकड़ी कृष्ण ने उनको छोड़ दिया और राधा रानी लटकने लगी डाली से। इसको देखकर रूप गोस्वामी मुस्कुराने लगे, लेकिन तभी एक अपाहिज ब्रजवासी वहां आए और रूप गोस्वामी को मुस्कुराते हुए देख के अपाहिज उनको लगा, जो लंगड़ा रहे थे, कि मुझे देख के हंस रहे हैं, उनको लगा अपराध हो गया। तो जैसे ही रूप गोस्वामी, तुरंत अगले क्षण वो दृश्य चला गया, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास आए, बोले लगता है मैंने कुछ अपराध किया, क्योंकि जो छवि दिख रही थी गायब हो गई, कैसे पता किसके प्रति अपराध किया? सनातन गोस्वामी का बड़ा सरल है, एक भंडारा घोषित करो, फीस्ट स्पॉन्सर करो, जिसके प्रति अपराध किया है वो फीस्ट में नहीं आएगा। ये उस समय लागू था, आजकल नहीं होगा ऐसा। वो आके पहले खाएगा, फिर बाद में बोलेगा मेरा इश्यूज है कुछ। तो फिर उससे आइडेंटिफाई किया, क्षमा याचना की। अव्यय अर्थात किसी के बॉडिली डिफॉर्मिटीज को लेकर अपराध नहीं करना चाहिए। आलस्य निरूपण अर्थात ये देखना कि ये तो एक दर्जन चपाती खाता है, ये तो 8 घंटा सोता है, ये तो सोते समय खर्राटे मारता है, या इस प्रकार उनके शारीरिक क्रियाओं को लेकर अपराध करना। वास निरूपण अर्थात केवल जो धाम में रहते हैं उनको महान समझना और बाकी जो धाम में नहीं रहते उनकी उपेक्षा करना। बंधु निरूपण अर्थात अपने ही परिवार वालों को सामान्य मानकर उनकी उपेक्षा कर देना कि ये तो अपने परिवार का है, अरे भाई डिवोटी है लेकिन, इसलिए सावधानी से बरतो उनके साथ। प्रकाश निरूपण अर्थात पूजनीय केवल गुरु हैं, बाकी सब यूं ही हैं, सम्मान करूंगा तो केवल गुरु का, बाकी छोड़ो। प्रकाश, प्रखर निरूपण अर्थात ये कुछ 2-4 लोग गुरु के बहुत निकट हैं, ये सम्मान के योग्य हैं, बाकी तो दूर दूर तक गुरु के आसपास भी नहीं भटकते, उनको हम अपमान कर सकते हैं, इसको कहते हैं प्रखर निरूपण। वर्तन निरूपण अर्थात इसका जो जॉब है, प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, इस प्रकार से है, इनका उस प्रकार से है, 2 लोगों के प्रोफेशन को लेकर भेदभाव करना भले वो वैष्णव हो। और दोष निरूपण अर्थात शास्त्र में जो कैरेक्टर है, जैसे द्रौपदी ने 5 पति क्यों लिए, अरे तेरा क्या जाता है भाई, तुम्हारे लाइफ में कम प्रॉब्लम है क्या? शास्त्र के लोगों को लेकर उन पर प्रश्न चिन्ह उठाना, दोष देखना। तो ये 12 प्रकार के जो अपराध श्रीपाद रामानुजाचार्य वर्णन कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि ये 3 लक्षण हम देखते हैं, अटेंटिव इन चैंटिंग, अटेंटिव इन सेवा, एंड बीइंग अटेंटिव इन डीलिंग्स विद अदर सेवक्स। सो देयरफॉर टू बी अटेंटिव एंड एब्सॉर्ब्ड is the way to transform the heart. To be attentive in chanting, if you are attentive in chanting, you will be attentive and absorbed in your seva. If you are attentive and absorbed in your seva, automatically you will be attentive and absorbed in dealing with the sevaks, the devotees, very, very carefully. Go brahmana vaishnave himsa karyachi apar. सही पाप होते मोरा हो का निस्तार। सो प्रभुपाद राइट्स इन दैट परपोर्ट, These are the two types of sin which the governor is expressing. I killed the cows and I insulted the Vaishnavas. Both these are very, very terrible sins, and we must try to protect ourselves from this. इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहां मंत्रेश्वर में इस गवर्नर के हृदय को परिवर्तित करके हम लोगों के सामने एक बड़ी आशा की किरण पैदा कर दी कि अगर हम हरिनाम संकीर्तन का अवलंबन करें, अपने जीवन में इसको पालन करें, दूसरों में वितरित करें, हम भी परिवर्तित हो जाएंगे और हमारे हृदय परिवर्तन और आनंद के भाव को देखकर दूसरे भी अवश्य ही उससे प्रभावित होकर उनका हृदय भी अवश्य परिवर्तन होगा. इस्कॉन एनवीसीसी में राधेश्याम प्रभु और सारे काउंसलर्स और वाइस प्रेसिडेंट बोर्ड और सभी लोग मिलकर इतने सुंदर लीडरशिप का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं और इस उदाहरण से प्रभावित होकर विश्व के अब 600-700 से ऊपर मंदिर सभी देख रहे हैं कि कैसे हम भी अपने मंदिरों में इस स्तर के भक्ति का प्रभाव हम ला सकें, भक्ति की लहर ला सकें. क्योंकि पैसा खर्च करके बड़ा मंदिर तो फिर भी बन सकता है, लेकिन उस मंदिर को आतुर और श्रवण करने के लिए बड़े ही उत्सुक भक्तों से खचाखच भरना ये किसी के लिए संभव नहीं जब तक महाप्रभु की असीम कृपा नहीं होती. इसलिए आप सभी के उत्साह को देखकर हम ये कह सकते हैं दावे के साथ, श्री प्रभुपाद और श्री चैतन्य महाप्रभु आप सभी की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हैं और आपके ऊपर असीम मात्रा में उनका आशीर्वाद निरंतर चल रहा है. इन शब्दों के साथ कथा को मैं यही विराम देता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण.